Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
कई ऐसे हमारे वृक्ष हैं जो एक बार फल देते हैं और खुद नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान है, जैसे मक्का है, जैसे गेहूं है, ज्वारी है। वह एक ही पेड़ में हर साल फल नहीं लगते, अंकुरित होंगे, वह परिणत होंगे, वृक्ष के रूप में जितना बढ़ना था वो बढ़ जाएंगे, उसके बाद फल लगेगा और फल लगने के बाद वह फल पाकांत वो नष्ट हो जाएंगे, वो खुद पेड़ नष्ट। जैसे केला है, उत्पन्न होगा और उसमें फल लगेंगे, फल लगने के बाद वो खुद नष्ट हो जाएगा। इसी तरह जैसे धान का वृक्ष नष्ट होने से पहले वो सारे के सारे संस्कार को धान में छोड़ेगा, वो धान में विद्यमान वो सारे बीजत्व का संस्कार फिर वह धान में रहेगा, वह जमीन में बोएंगे, फिर वह भी नष्ट हो जाएगा, वो धान्य बीज फिर अंकुर में आएगा, वृक्ष में आएगा, फल में आएगा, फूल में आएगा, पल में आएगा, वह नष्ट हो जाएगा। संस्कार परंपरा अनादि अनंत काल तक इसी तरह जैसे बीज और वृक्ष का परंपरा चलता रहता है, इसी तरह क्षणिक विज्ञानवाद यह कि वो आत्मा पहले क्षण में उत्पन्न हुई हुई आत्मा वह दूसरे क्षण में नष्ट होती है, लेकिन नष्ट होने से पहले दूसरे क्षण में अपने ही संस्कार, अपने ही जाति, अपने ही सादृश्य चैतन्य ज्ञान गुण से युक्त दूसरी आत्मा को पैदा करके पहली आत्मा नष्ट हो जाती है। और दूसरी आत्मा भी अपने नष्ट होने से पहले पहले तीसरी आत्मा अपने ही जाति का, अपने संस्कार से, अपने गुण विशिष्टता को लेकर तीसरे आत्मा को पैदा करके वह दूसरे आत्मा नष्ट हो जाती है। इसी तरह तीसरे, इसी तरह चौथे, इसी तरह पांचवें, एक एक क्षण में संसार के हर वस्तु क्षणस्थायी है, एक ही क्षण में रहते हैं, उसी क्षण में नष्ट हो जाते हैं। प्रतीत हुआ कि नष्ट हुआ, प्रतीत हुआ कि नष्ट हुआ, ये क्षणिक विज्ञानवाद ये बुद्ध दर्शन का ही एक अवान्तर भेद है। उस बात को खंडन करने के लिए शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि यदि अलग अलग आत्मा अलग अलग समय में अलग अलग नई नई आत्मा उत्पन्न होते हैं, यदि तुम मानते हो तब फिर ये प्रत्यभिज्ञा संभव नहीं होगा। ये प्रत्यभिज्ञा देखने में आता है, इसलिए सिद्ध होता है कि वह आत्मा प्रतिक्षण उत्पन्न होकर नाश नहीं होता। ये बात प्रत्यभिज्ञा को तभी संभव हो सकता है जब एक ही आत्मा का अस्तित्व हो। प्रतिविज्ञा उस ज्ञान विशेष को कहते हैं जैसे उसको आप लोगों के प्रसिद्ध भाषा में स्मरण कह देते हैं, स्मृति, याददाश्त, मेमोरी, आप लोग कहते हो समझना, याद, उसी को वेदांत में प्रतिविज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा और याददाश्त में अंतर होता है, कहीं कहीं बार याद जो है वह सादृश्य को देखकर स्मरण होता है। पहले कोई वस्तु देखा था, कहीं देखा था, किसी व्यक्ति को देखा था, कहीं देखा था, लेकिन बीच में भूल गए, स्वाभाविक ही है। व्यक्ति हर वस्तु को हमेशा स्मरण में नहीं रख सकता है। जब से आप होश में आ गए हैं, समझदार बन गए हैं, तब से लेकर आज तक आप लोगों ने कितने वस्तुओं को देखा है, कितने वस्तुओं का अनुभव किया है, तो क्या वो सब वस्तुओं की याददाश्त है अभी आपके पास? नहीं है, वो भूल गए हैं। लेकिन कभी उसी वस्तु के, उसी सादृश्य का वस्तु अचानक सामने आ जाता है तो आप सोचने लगते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति को, ये वस्तु को तो मैंने पहले देखा है, पहले देखा है। ये पहले कहां देखा, कब देखा, किस तरह देखा, किन प्रसंगों में देखा, इसकी जब आपको स्मरण हो आता है तो उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा उसको कहते हैं। अब ये प्रत्यभिज्ञा यानी स्मृति, स्मृति यानी प्रत्यभिज्ञा, ये तभी संभव होता है जब पहले देखे हुए वस्तु का, अनुभव किए हुए का ही प्रत्यभिज्ञा होती है। यदि पहले अनुभव नहीं किया होता तो फिर कभी भी प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी, यानी स्मृति नहीं होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि स्मृति हमेशा अनुभव पूर्विका होती है। आप इस वाक्य को समझ गए होंगे, स्मृति यानी याददाश्त अनुभव पूर्वक होता है, पहले आपने अनुभव किया होगा तभी उसका कभी याददाश्त होगा, स्मृति होगी। यदि कभी भी आपने अनुभव नहीं किया है तो उसका स्मरण कभी भी नहीं हो सकता है, अनुभव का स्मरण नहीं होता, अनुभव का ही स्मरण होता है। तो इससे क्या हुआ, पहले वाला आत्मा ने अनुभव किया और अनुभव करने वाला आत्मा जिस समय अनुभव कर रहा था उस समय मर गया। अनुभव करने वाला जिसने अनुभव किया था, अनुभव करने वाला आत्मा जिस समय अनुभव किया उसी समय वह अनुभव करते ही मर गया, तो कालांतर में उसकी समझना, उसकी स्मृति, उसकी याद कैसे रहेगी। उदाहरण के रूप में, कल के आप और आज के आप वही हैं कि अलग अलग हैं? कल भी प्रवचन सुनने आए थे, कल जो आए थे आप और आज जो आ रहे हैं आप, ये वही है कि अलग अलग है? बुद्धों का कहना है, क्षणिक विज्ञानवाद का कहना है कि कल का तो मर गया, खत्म हो गया, कल का कल था वो मर गया, फिर आज का कहां से आ गया? बोले वो जो मरने वाला आत्मा है उसने अपने जाति का, अपने साधरी से दूसरी आत्मा को पैदा करके मर गया। बुद्धों के क्षणिक विज्ञानवाद के हिसाब से तो कल से आज तक आप करोड़ों बार मर चुके हैं और करोड़ों बार आप पैदा हो चुके हैं, क्षणिक विज्ञानवाद। लेकिन ये मृत्यु और उत्पत्ति, मृत्यु और उत्पत्ति इतने झड़प से होता है कि आपको बीच में ज्ञात अवकाश की प्रतीति नहीं होती है इतनी जल्दी से। इसलिए वो दो चीज का दृष्टांत देते हैं, एक तो देते हैं दीप शिखा का, क्षणिक विज्ञानवादी लोग, जैसे दिया जल रहा है तो वो जो दिए की लौ है वो जिस समय जल रही थी, आपने अग्नि संयोग किया और संयोग अग्नि के संयोग होते ही वो जला, जलते ही वो बुझ गया। लेकिन उसकी खासियत यह है कि वह बुझने से पहले फिर अपने जैसे दूसरी लौओं को पैदा करके वो बुझ गया, फिर वह बुझ गया, फिर दूसरे को पैदा किया वो बुझ गया, पैदा किया बुझ गया। तो ये सजातीय ज्योति को, लौओं को वो पैदा करते हुए पहले के नष्ट होना, दूसरे उत्पन्न होना, पहले नष्ट होना दूसरा उत्पन्न होना, पहला नष्ट होना दूसरा उत्पन्न होना, वह इतने क्षणिक इतने झड़प से होता है कि आपको भ्रांति होती है कि वह वही का वही है। एक दृष्टांत दीपक का देते हैं, आज का विज्ञान भी ये मानता है, ये जो मरकरी जल रही है, बत्ती जो जल रहा है पावर में, वह इतनी जल्दी जल्दी बुझते हुए और जलते बुझते झड़प से करता है और उसी के चलते मीटर रीडिंग होता है। यदि वह बुझते हुए जलते हुए न करें तो वह रीडिंग ही नहीं हो पाएगा मीटर, उनका कहना। लेकिन वह इतनी तीव्र से होता है, कभी कभी लो वोल्टेज हो तो आपको भान होता है कि लप 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 करता है, तो ऐसा क्यों हुआ? बोले लो वोल्टेज है इसीलिए। वही प्रमाण है कि ये बुझता हुआ जलता है, जलता हुआ बुझ रहा है, बुझना जलना झड़प से होता है। तो कोई किसी वस्तु को जोर से घुमाता है तो भ्रांति ये हो जाती है कि वो एक ही है, पंखा ही समझ लो, इतनी झड़प से है कि उसके पंखे के पंखड़ियां अलग अलग, भ्रांति नहीं होती है, अलग अलग हैं ये भान नहीं हो पाता है। ये भ्रांति होती है कि एक ही चीज घूम रहा है वो, जबकि वह तीन पंखे हैं, दो पंखे हैं, बंद की अवस्था में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वो इतनी तीव्रता से चलते हैं कि वो पंखड़ियां वो ये दो अलग अलग हैं ऐसा भान नहीं हो पाता है। ये भ्रांति है, ये तीव्रता के चलते हैं। ये सृष्टि और उत्पत्ति संहार, सृष्टि और संहार इतनी तीव्र से होती है कि ये नष्ट हो गया, ये पैदा हुआ, ये भान नहीं हो पाता है। अभ्रांति होती है कि वही का वही है। इसको खंडन किया, प्रागप स्वाप समिति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते। ये प्रत्यभिज्ञान से ही सिद्ध होता है कि आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। नहीं तो जगने वाला व्यक्ति, गहरी निद्रा से जगने वाला व्यक्ति यह कह ही नहीं पाएगा कि मैं आज बहुत गहरी निद्रा में सोया था, और वही जो गहरी निद्रा में सोने वाला मैं हूं वही अब इस समय जगा हुआ हूं, और जो मैं इस समय जगा हुआ हूं वही कुछ देर पहले मैं स्वप्न देखता था, और जो मैं स्वप्न देखता था वही स्वप्न देखने के बाद गहरी निद्रा में गया, और जो गहरी निद्रा में गया वही मैं स्वप्न देखने वाला, और जो मैं स्वप्न देखने वाला वही मैं इस समय जागृत का अनुभव करने वाला। प्रत्यभिज्ञा को नहीं मानेंगे, एक आत्मा को नहीं मानेंगे, तो जागने के बाद स्वप्न की स्मृति किसी को भी नहीं होगी। आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा, ये अनुभव भी यही बता रहा है, श्रुति भी यही बता रहे हैं कि आत्मा एक है, अनुभव भी यही बता रहा है कि स्वप्न देखने वाला जो व्यक्ति है वह मैं वही हूं, और ये प्रत्यभिज्ञा के अनुकूल ही तत्त्वमसि ये श्रुति वाक्य है। जैसे तत्त्वमसि ये वाक्य एक ही आत्मा को प्रतिपादन करती है, आत्मा की एक रूपता का प्रतिपादन करती है ये वाक्य, जैसे लोग में व्यवहार में स्वप्न देखने वाला, रात के स्वप्न देखने वाला वही मैं इस समय जागृत देख रहा हूं, तो ये प्रत्यभिज्ञा है, ये स्वप्न की स्मृति जागृत में। इसको क्या कहते हैं, स्वप्न में स्वाप्निक पदार्थ का अनुभव हुआ, और उस स्वप्न में स्वाप्निक पदार्थ का जो अनुभव हुआ है वो अनुभव करता कौन है, करता कोई और है, और वही स्वप्न के स्वाप्निक पदार्थों का अनुभव करने वाला जो करता है आत्मा है वही जागृत में आया है और अभी जागृत का अनुभव कर रहा है। अनुभूयमान अलग अलग हो सकते हैं, अनुभव करता अलग अलग नहीं हो सकते, अनुभव के पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, वस्तु अलग अलग हो सकते हैं, वस्तु के बारे में उत्पत्ति नष्ट होना ये माना जा सकता है, ये तो सभी मानते हैं, ये तो वेदांती भी मानता है कि पदार्थ सब उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, स्थिर होते हैं, नष्ट होते हैं, जगत ही क्षणिक है, जगत ही गतिशील है, नाशवान है, उत्पत्ति नाशवान है, दृष्ट नष्ट, ये वेदांत का वाक्य है। ये जगत का स्वरूप ही दिखाई पड़ता है नष्ट होता है, दिखाई पड़ता है नष्ट होता है, लेकिन यह दिखाई पड़ने वाला नष्ट होने वाले जगत के बीच में एक तत्व ऐसा मानना पड़ता है जो उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता, वह है इस अनुभव का एक रूपता करने वाला साक्षी, पूर्व अनुभव का और पश्चात स्मृति का, और जागृत के अनुभवों का संस्कार के माध्यम से स्वप्न में देखने वाला। जो जागृत का अनुभव करता है वही उन संस्कारों को लेकर स्वप्न देखता है। जागृत में घट देखने वाला दूसरा हो और स्वप्न में घट देखने वाला दूसरा हो तो जागृत के घट की स्मृति न होगी तो फिर स्वप्न में कोई भी व्यक्ति घट देख ही नहीं सकता है। जागृत में देखे हुए घट की स्मृति यदि उसके पास न हो, या जागृत में देखे हुए अनुभव का संस्कार उसके पास न हो, तो वह जागृत अनुभव के संस्कारहीन व्यक्ति कभी भी स्वप्न नहीं देख सकता। स्वप्न टोटल जागृत अवस्था का अनुभव है और वो संस्कार है। इसीलिए कई बार प्रश्न करते हैं कि स्वप्न यदि जागृत का ही अनुभव है, तो कई स्वप्न ऐसा आते हैं जो जागृत में खुद अनुभव करना संभव नहीं है, फिर भी स्वप्न दिखाई पड़ता है, वो दृश्य दिखता है। कैसे माना जाए? जागृत का ही संस्कार है, कैसे माना जाए? इसके लिए अनेक उत्तर दिया गया है, अनेक ढंग से समझाया गया है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का एक छोटा सा ग्रंथ है पंचीकरण, उस पंचीकरण ग्रंथ में सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक है, वहां सब दिखा दिया, लिखा है, स्पष्ट कर दिया है पंचीकरण वार्तिक के माध्यम से कि कैसे स्वप्न सिद्ध होता है, जागृत के संस्कार कैसे रहते हैं। बड़ा विचित्र ढंग से समझाया, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है जब उस बात का हम स्मरण करते हैं। कई बार हम मनुष्य होते हुए भी आकाश में पक्षी की तरह उड़ते हैं, यह अनुभव होता है स्वप्न में। स्वप्न में हम आकाश में उड़ गए, और जबकि जागृत में कोई मनुष्य आकाश में प्लेन के अलावा, ग्लाइडर के अलावा उड़ना संभव नहीं है। कोई ग्लाइडर हो, कोई प्लेन हो, तभी उड़ेगा वो। जब मनुष्य जीवन में यह अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर स्वप्न में उड़ते हुए का अनुभव कैसे हो रहा है? नियम के अनुसार तो जागृत में अनुभव होने पर ही स्वप्न में अनुभव होगा, जागृत में अनुभव नहीं होगा तो स्वप्न नहीं देख पाएंगे। तो उसका उत्तर दिया है, संस्कार केवल एक जन्म के नहीं होते। मनुष्य में जो स्वप्न संस्कार हैं, वह केवल मनुष्य जन्म के ही संस्कार नहीं है। संस्कार तो आप जितनी बार जन्म लिए हैं, हर बार आपके पास अलग अलग संस्कार सन्निहित हुआ है। आप जब पक्षी बनकर आकाश में उड़ते थे, वह संस्कार आपके चित्त में विद्यमान है, क्योंकि पक्षी का स्थूल शरीर आज नहीं है, लेकिन पक्षी बनते समय का जो सूक्ष्म शरीर है, वही सूक्ष्म शरीर आज मनुष्य बनते समय भी है। और आज मनुष्य बनते समय का जो सूक्ष्म शरीर है, वह कालांतर में, जन्मांतर में, पक्षी बनते समय में भी वही सूक्ष्म शरीर रहेगा। सूक्ष्म शरीर बदलता नहीं, स्थूल शरीर ही बदलता है। हम मरकर यदि पक्षी होना होगा, तो उस समय केवल ये मनुष्य स्थूल शरीर नष्ट होगा, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। यही सूक्ष्म शरीर पक्षी के स्थूल शरीर में जाएगा, और पक्षी के समय में जो सूक्ष्म शरीर है, वह पक्षी मरने के बाद यदि मनुष्य बनना होगा, तो पक्षी के स्थूल शरीर में रहने वाला सूक्ष्म शरीर वही मनुष्य के स्थूल शरीर में आएगा। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर एक ही बार पैदा होता है और एक ही बार नाश होता है। सूक्ष्म शरीर बार बार पैदा होता नहीं और बार बार नष्ट नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर महाप्रलय में नष्ट होता है, ध्यान देना, महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है। स्थूल शरीर तो नष्ट होता ही है, साथ ही सूक्ष्म शरीर भी नष्ट होता है, जिसको महाप्रलय कहते हैं। सारे सृष्टि का जब प्रलय होना होता है, तो तब आपका सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा। उस समय में यहां तक कि कारण शरीर भी नष्ट तो नहीं मानेंगे, लेकिन वह कारण शरीर का सद्भाव रहेगा। कहां रहेगा? तो वह परमात्मा में ही संस्कार के रूप में रहेगा। इसलिए कारण शरीर अनादि अनंत काल तक एक ही है। केवल ज्ञान से ही कारण शरीर नष्ट होता है, महाप्रलय में भी कारण शरीर नष्ट नहीं होगा। प्रारब्ध समाप्त होने पर स्थूल शरीर नष्ट होगा, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होगा। प्रारब्ध समाप्त होने पर स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध से बना नहीं है, इसलिए प्रारब्ध समाप्त होने पर नष्ट नहीं होगा। स्थूल शरीर प्रारब्ध से बना है, इसलिए प्रारब्ध समाप्त होते ही स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध से नहीं बना है, इसलिए प्रारब्ध समाप्त होकर स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर फिर किसके द्वारा बना, कब बना? सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के शुद्ध संकल्प से बना, और जब महाप्रलय में परमात्मा उस संकल्प का उपसंहार करता है तो सभी का सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। तब फिर जीवात्मा कहां रहते हैं? तो बोले कारण शरीर में रहते हैं। जब तक दोबारे सृष्टि नहीं होगी, जब दूसरी बार सृष्टि करना होता है, तब ईश्वर अपने संकल्प से सारे सूक्ष्म शरीरों का निर्माण करता है, तब जाकर वह इस कारण शरीर उस सूक्ष्म शरीर में व्यक्त होता है, फिर वही प्रारब्ध के द्वारा स्थूल शरीर निर्माण होता है, तब फिर वह तीनों शरीर स्थूल शरीर में व्यक्त होते हैं। इस समय आपके पास तीनों शरीर भान हो रहा है, तीनों शरीर व्यक्त है। इस समय आपके पास तीन तीन शरीर हैं, एक शरीर नहीं है, तीनों शरीर है, तीनों शरीर का आपको भान हो रहा है। लेकिन जिस समय आप स्वप्न देखेंगे उस समय स्थूल शरीर का भान नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भान होता है। और जब आप गहरी निद्रा में जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का, दोनों शरीर का भान नहीं होता है, केवल कारण शरीर का भान होता है। और उसी कारण शरीर में आप शरीर ही विद्यमान रहते हो और सुषुप्ति का अनुभव करते हो, और उसी अनुभव को लेकर जब आप जागते हो तब ये कहते हो कि आज मैं बहुत गहरे निद्रा में सोया, कुछ नहीं जाना, बड़ा आनंद आया। ये क्या है? प्रतिभिज्ञा है, इसी को कहते हैं प्रतिभिज्ञा। प्रेमपुरी आश्रम आपने कल देखा था और आज भी देख रहे हो, तो यही प्रेमपुरी आश्रम है। ये कैसे आपको निश्चय होगा? प्रतिभिज्ञा, वो प्रतिभिज्ञा आपके पास है। कल देखा हुआ ज्ञान अनुभव आपके पास था, तब आप आए तो यही प्रेमपुरी आश्रम है और यही मुझे जाना है। कि आपकी सारी के सारी व्यवस्था वो प्रतिभिज्ञा से ही होती है, उसी को आप आपके व्यवहार में स्मृति कहते हो। कल की स्मृति ना हुई होती, प्रेमपुरी आश्रम यही है, ये स्मृति आपके पास ना रहती तो आप इस गेट से घुसते अंदर? है ये प्रतिभिज्ञा। देखो ये प्रतिभिज्ञा प्राणी मात्र में रहता है, केवल मनुष्य में रहता है ऐसा नहीं है, प्राणी मात्र में प्रतिभिज्ञा रहती है। जैसे कई बार हमने देखा, पहले हम यहां पावलुआ में रहते थे, त्यागमूर्ति गणेशान जी का फ्लैट था पावलुआ में, ऊपर मलबार हिल के, तो आप लोगों को सबको पता है, पुराने लोगों का, तो वहां रहते थे। तब ये कबूतरों को दाना डाला करते थे, तो था वो तीसरे माने पांचवें फ्लोर, माने तीसरे पर था वो फ्लैट। तो हम क्या करते थे कि सुबह थोड़ा दाना, वो ज्वारी और मक्का चना रखा था, कोई भक्त ला के रख दिया था, स्वामी जी रोज डाल दिया करना, तो हमने कहा डाल देंगे, उसमें क्या है। तो सुबह उठते थे डब्बा निकाल के डाल देते थे, और डालने के बाद ठीक टाइम में डालते थे और डब्बा ठक 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 बजा देते थे वो डब्बा, तो कबूतर सब वो आवाज सुनते ही आ जाते थे, खा के चले जाते थे। एक दिन हमने दाना नहीं डाला, ठक ठक कर दिया तो वो सब आ गए, आ तो गए, उसको दाना खाने को ही नहीं मिला, लेकिन दाना था नहीं। थोड़ी देर इधर खोजे इधर खोजे चले गए। दूसरे दिन भी हमने वैसे ही किया, उनको ठक ठक किया, आ गए, दाना खोजे मिला नहीं तो उड़ के चले गए। तीसरे दिन भी हमने ऐसे ही किया तो नहीं आए। तब तो दो चार दिन के बाद हमने ऐसे ही किया लगातार एक हफ्ते तक, तो तब तो वो आना ही बंद कर दिया कि ये तो ये फ्रॉड बजा रहा है दफा। तो ये कैसे हुआ भाई? प्रत्यविज्ञा, प्रतिविज्ञा, ये उसकी स्मृति। तो प्रतिविज्ञा, पहले जो ये डब्बा बजाते ही हमको खाना मिलने वाला है करके जो आते थे, एक दिन पहले की जो अनुभव है उसका स्मरण करके दूसरे दिन भी आए, उसी का स्मरण करके तीसरे दिन भी आए, वो प्रतिविज्ञा है। अब प्रतिविज्ञा क्या बनी कि ये डब्बा बजने पर भी खाना नहीं मिलेगा, अब ये प्रतिविज्ञा बनी। तो दाना डालकर डब्बा बजाने पर भी वो नहीं आए, क्योंकि उनकी प्रतिविज्ञा क्या बन चुकी है, नहीं मिलने वाला है। अब वो फिर प्रतिविज्ञा बनानी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा जगत प्रतिविज्ञा पर चलता है। स्वयं देवदत्ता, ये जो प्रयोग करते हैं ना, ये वही व्यक्ति है। आप कैसे निश्चय कर रहे हो? पिछले बार जून में आया हुआ आत्मानंद वही है, ये प्रतिविज्ञा आपके पास है, वही निश्चय कर रहा है। इसलिए हम भी निश्चय कर रहे हैं कि पिछले बार आए गिरीश भाई वही है, हमारे पास वो प्रतिविज्ञा है, आपके पास वो प्रतिविज्ञा है। उस प्रतिविज्ञा से आप भी ये निश्चय करते हैं कि ये वही स्वामी जी हैं, और हम भी यही निश्चय करते हैं कि वही गिरीश भाई है। ये प्रतिविज्ञा, ये प्रतिविज्ञा जिसको अनुभव हुआ है उसी को होगा, अनुभव जिसको नहीं हुआ है उसको प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती है। तो अनुभव करता और प्रतिविज्ञा से सिद्ध होता है कि एक ही आत्मा जिसने अनुभव किया वही आत्मा प्रतिविज्ञा करता है। तो सुषुप्ति का अनुभव करने वाला व्यक्ति वो प्रतिविज्ञा जागृत में, और क्योंकि उसको सुषुप्ति में अनुभव हुआ आनंद आया वो प्रतिविज्ञा है, इसलिए जागृत में चाहे जैसा भी आनंद का प्रसंग आवे उससे ज्यादा उसको सुषुप्ति में आने के कारण कहता है कि अब तो सोने दो, चलो बंद करो टीवी, बंद करो ये गप सप, क्योंकि उसको वहां विश्रांति है, वो प्रतिविज्ञा काम कर रही है। एक ही व्यक्ति माने बिना ये प्रतिविज्ञा की संगति नहीं होती। राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्र करणोपसंहरण तो यो भूत सुसुप्त पुमान प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये या प्रत्यविज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। मैं वही पहले सोने वाला, वही मैं अब जगने वाला, और जो ये मैं जगने वाला वही मैं सोने वाला, सोने वाला जगने वाले के बीच में एक रूपता सिद्ध करने वाला प्रत्यविज्ञा है, इसलिए आत्मा एक ही है। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।